नूर वहीं खड़ी थी, गुस्से, अपमान और दर्द के बीच जमी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो गिर नहीं रहे थे, जैसे उसने खुद को मजबूत बना लिया हो। सुल्ताना बेगम का सब्र अब जवाब दे चुका था। उन्होंने गुस्से में कचौरी वापस लिफाफे में डाली, वो लिफाफा साकेत के हाथ में थमाया और सख्त लहजे में बोली, पकड़ो ये और निकलो यहाँ से, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशर्म, निकलो यहाँ से। साकेत तो चला गया, मगर उसके शब्द जैसे दीवारों में गूंजते रह गए। साकेत एक पल के लिए ठिठका, फिर मुड़कर बाहर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जाते जाते भी वो रुका नहीं। उसने पीछे मुड़कर कहा, अब मुझे निकाल रहे हैं और दूसरों को तो आप खाना खिलाती हैं, नूर से क्यों नहीं कहते कुछ? उसकी आवाज़ में दर्द साफ था, गुस्से के पीछे छुपा हुआ। असल में साकेत गुस्से में था, लेकिन उस गुस्से की जड़ कुछ और थी। वो नूर को पसंद करता था और उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके आसपास दूसरे लड़के नजर आएं। मगर उसका ये एहसास प्यार कम और इल्ज़ाम ज़्यादा बनकर बाहर आ रहा था, और उसी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। नूर गुस्से और गहरे दुख के साथ वहीं सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू अब रुक नहीं रहे थे। ऐसा पहली बार नहीं था, हर कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा देता था, और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रो रही थी, जैसे दुनिया से नहीं खुद से छिपना चाहती हो। सुल्ताना बेगम ने जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो उनका दिल भर आया। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होता है कि उसकी बेटी बेइज्जती के बोझ तले टूट रही हो। वो धीरे धीरे चलती हुई नूर के पास आई, उसके पास बैठी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बस कर बेटा, लोगों का काम है कहना, तो क्यों उनकी बातों को दिल पर ले रही है? मगर नूर के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मी, मैंने क्या किया है? उसने रोते हुए कहा, क्यों हर कोई मुझ पर उंगली उठाता है? उसकी आवाज़ में टूटन थी और सवाल भी, जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। सुल्ताना बेगम ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तूने कुछ नहीं किया, बस लोग ही गलत हैं। घर का वो कोना जहाँ कुछ देर पहले बहस की आवाज़ें थीं, अब सिर्फ एक माँ बेटी के दर्द से भरा हुआ था। दूसरी तरफ ज़ुबैदा बेगम अपने बेटे अरमान को लेकर बेहद परेशान थीं। अरमान आजकल बिल्कुल बदल गया था, चुपचाप, गुस्से में और खुद में ही खोया हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बात उसे अंदर ही अंदर खा रही हो। असल में उसे नूर से मोहब्बत थी। वो ना कुछ पूछ पा रहा था, ना ही खुद को समझा पा रहा था। ज़ुबैदा बेगम ने आखिरकार फैसला किया और रेहान के पास पहुंची। देखो बेटा, तुम आफताब से बात करो ना, उन्होंने नरमी लेकिन चिंता भरे लहजे में कहा। उसकी बहन के लिए अरमान का रिश्ता शुरू करो, मैं अरमान को लेकर बहुत परेशान हूँ। रेहान ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर थोड़ा सोचकर बोला, मैं मानता हूँ कि रिदा मेरे दोस्त की बहन है, लेकिन वो मेरी भी बहन की तरह ही है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रेहाना बेगम बीच में ही बोल पड़ी, रिदा तुम्हारी बहनों की तरह है, मगर अरमान तो तुम्हारा भाई है, उन्होंने आगे कहा। तुम उसके लिए दोबारा बात नहीं कर सकते आफताब से? अगर इनकी शादी हो जाए, हो सकता है सब ठीक हो जाए, मगर अगर शादी के बाद अरमान का कोई एक्स्ट्रा अफेयर हुआ तो? रेहान के लहजे में शक भी था और कहीं ना कहीं अरमान को लेकर एक तरह का इल्ज़ाम भी। ज़ुबैदा बेगम ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, अरमान का नूर से अफेयर था और किसी से नहीं। असल में उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो अरमान में, उसे मोहब्बत निभाने नहीं आई। उनकी आवाज़ में अपने बेटे के लिए दर्द भी था और सच्चाई का बोझ भी। उसका पहले भी कोई अफेयर नहीं था, उन्होंने सफाई देते हुए कहा। अगर तुम गेस्ट हाउस वाली बात कर रहे हो तो अब सब जान चुके हैं, वो अरमान नहीं था, उसकी गाड़ी फैजान लेकर गया था और नूर उसके साथ थी। ज़ुबैदा बेगम आगे कुछ और कहने ही वाली थी कि रेहान अचानक चौंक गया। फैजान? उसके चेहरे पर हैरानी साफ छलक रही थी। उसे अब तक इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उस दिन जब गेस्ट हाउस वाली बात घर में हुई थी और फैजान आया था, तब रेहान घर पर नहीं था। उसी दौरान अरमान और फैजान के बीच हाथापाई भी हुई थी और ये सब माहिरा की मेहरबानी से हुआ था। अब रेहान के दिमाग में एक साथ कई बातें घूमने लगी थीं, जैसे किसी अधूरी कहानी के टुकड़े अचानक जुड़ने लगे हों। मगर ज़ुबैदा बेगम ने उसकी इस हैरानी को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात पर जोर दिया। तुम आफताब से बात करो, रिदा कहिए, मैं अपने बेटे को इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती। उनकी आंखों में आंसू थे, आवाज़ भर्रा गई थी। मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आफताब से बात करूँगा, रेहान ने आखिरकार कहा। मगर आप माहिरा को समझा दीजिए, इस बार कोई भी उल्टी सीधी बात ना करे जैसे पिछली बार की थी, उसकी आवाज़ में साफ चेतावनी थी। तभी जैसे वक्त ने उसी पल को चुना हो, माहिरा वहाँ आ गई। वो कहीं जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, हाथ में पर्स, चेहरे पर हल्की सी सख्ती। उसने रेहान की बात सुन ली थी। नहीं कहूँगी, उसने सीधे कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है तुम्हारी? जुबेदा बेगम ने तुरंत पूछा, जैसे उन्हें बस अपने बेटे की खुशी चाहिए थी, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। माहिरा ने ठहर कर कहा, रिंग सेरेमनी मेरे गेस्ट हाउस में होनी चाहिए। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। असल में वो चाहती थी कि उसके गेस्ट हाउस की शुरुआत शानदार तरीके से हो, ताकि लोग आएं, देखें और उसका नाम बने। उसकी बात सुनकर रेहाना बेगम कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उन्होंने जावेद की तरफ देखा, जैसे उनकी राय जानना चाहती हों। रेहान भी माहिरा की तरफ देख रहा था, उसकी नजरों में सोच थी और थोड़ा सा संदेह भी। आप लोग देख लो क्या करना है, उसने आखिर में जुबेदा बेगम से कहा। मैं आफताब से बात करता हूँ, इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। माहिरा भी बिना रुके, बिना कुछ और कहे वहां से चली गई, जैसे उसने अपनी बात रखती हो और अब उसे किसी जवाब का इंतजार नहीं। भाभी, आप सोच नहीं सकती, जुबेदा बेगम ने भारी दिल से कहा। जब मैंने अरमान की आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल कितना टूट गया। वो रेहाना बेगम के सामने अपना दर्द हल्का कर रही थी। रेहाना बेगम ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, एक बार अरमान की शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा। बच्चे हो जाते हैं तो इंसान खुद ब खुद संभल जाता है। अल्लाह करे भाभी वो जल्दी से संभल जाए, जुबेदा बेगम ने दुआ की तरह कहा। अब उनका बस एक ही मकसद था, जितनी जल्दी हो सके अरमान और रिदा का निकाह हो जाए। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, रेहाना बेगम ने यकीन दिलाया। देखा ना जैसे सादिया ने रेहान को संभाल लिया। उनकी नजरों में अपनी बेटी और बहू के बीच सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि जिस बेटे पर उन्हें इतना भरोसा है वही आगे चलकर सबसे बड़ा तूफान बनने वाला है। रेहान जो बाहर से समझदार, संभला हुआ और जिम्मेदार दिखता था, असल में उसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना अंधेरा, ये अभी किसी को नहीं पता था। और सादिया, वो सारी रात अरमान जागता रहता है। जुबेदा बेगम भी अरमान की बात कर रही थी, सुबह से कहीं निकल गया, पता नहीं कहाँ गया है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, रेहाना बेगम ने जुबेदा बेगम से कहा था। ये टाइम बुरा होता है, गुजर जाता है, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, सब ठीक हो जाएगा, रेहाना ने बड़े प्यार से समझाया था अपनी देवरानी को। फैजान अपनी अकादमी में था, अकादमी की क्लासेस खत्म हुई थी और वो अपने कमरे में आया था। उसे बार बार सादिया का ख्याल आ रहा था, साथ ही उसकी बातें। तुम भी चीखो जिस तरह से वो चीख रही थी, चीखने से झूठ सच में नहीं बदल जाता, वो ऐसी ही थी। नूर के खिलाफ सादिया ने जो जो कहा था फैजान को याद आ रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सादिया ने सिर्फ नूर को ही नहीं फैजान को भी जलील किया था। फैजान ने ठंडी सांस ली। सादिया तुम मेरी बहन हो, मुझे जो कहती हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी बहन हो मेरी, मगर तुम्हें नूर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, किसी लड़की के कैरेक्टर के बारे में ऐसा कहना बहुत गलत है।
फैजान को सादिया पर बहुत गुस्सा आया था।